साथियों आदाब, मैं हूं अनीस और आप सुन रहे हैं झांसी मोबाइल वाणी। साथियों, बुंदेलखंड अपने सूखेपन के लिए मशहूर था, आपने ये भी सुना होगा। लेकिन आज पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि बुंदेलखंड में बहुत तेजी से बारिश हो रही है। यहाँ जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं झांसी में भी बहुत तेज बारिश आ रही है। लोगों ने अपना काम छोड़ छाड़ करके घर में बैठने पर मजबूर कर दिया है। इस बारिश के पीछे क्या रीजन है, क्या वजह है, आइए जानते हैं। पिछले कई सालों से, कई वर्षों से काम करने वाले इस क्षेत्र में हमारे एक एक्सपर्ट हैं, एक जो सोशल वर्क भी करते हैं और साथ में जलवायु परिवर्तन पे भी काम करते हैं। सर, आपका झांसी मोबाइल वाणी पे स्वागत है। आप अपना परिचय दें और अपने बारे में थोड़ा बताएं।
जी सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और झांसी मोबाइल वाणी के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मेरा नाम विकेश प्रजापति है और मैं ग्राम बनगुआ का, जिला झांसी का ही रहने वाला हूँ। सर,
आप इसके बारे में क्या कहेंगे, जो पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और कंटिन्यूअसली बनी हुई है। मैं झांसी में देख रहा हूँ कि जगह जगह नाव बनाई जा रही है और बना बना के भेजी जा रही है। चित्रकूट में जो हुआ उसमें भी आप देखा, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
सबसे बड़ा हम सब लोगों के पीछे कहीं ना कहीं एक सोच जो बनती है, खासकर बुंदेलखंड में आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा कि इतनी भी बारिश नहीं हुआ करती थी कि सही से गेहूं इत्यादि और धान जैसी फसलें हो सकें। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इस बार और जो खासकर बारिश हो रही है, सावन के आसपास के दिनों में भी देखा, 4-5 दिन के लिए लगातार बारिश थी और अभी भी लगातार बारिश हो रही है और अलर्ट भी जारी है हमारे जो मौसम विज्ञान केंद्र है उसकी तरफ से कि लगातार, जैसा चित्रकूट में देखा हमने और इस तरफ यहाँ झांसी बुंदेलखंड में भी देख रहे हैं, मंदाकिनी नदी कितना उफान पर है लगातार। तो कहीं ना कहीं इन सब का प्राकृतिक आपदा के रूप में आना हम सबके जीवन में उन्हीं गतिविधियों से जुड़ा हुआ है सर। उनका कारण यही है कि जब हम देखते हैं कि लगातार एक तो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, आप देख रहे होंगे कि पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है, दुरुपयोग है
जी।
बाकी जो हमारी जो खेती है, खेती में रासायनिक प्रक्रिया इस कदर बढ़ी हुई है कि लगातार कोई भी फसल ले लीजिए, अगर हम अब बात करें, हम अभी 8-10 साल पुरानी बात बता रहे हैं कि बरसात की जो फसलें थी, जैसे कि हमारी उड़द है, मूंग है, मूंगफली है, तिली है, इनमें ना तो कोई प्रकार की रासायनिक दवाई डाली जाती। 8-10 साल पुराना ये रिकॉर्ड है कहीं ना कहीं, मैं ज्यादा लंबे दूर तक श्रोताओं को नहीं ले जाना चाहूंगा। और जो कि फसलें हो जाती थी, होता क्या था कि हमारे घर में जानवर थे, जानवरों के लिए खेतों से चारा आता था, तो फसलों के बीच का चारा जो निकलता था उससे हमारे जानवरों का भरण पोषण होता था, वही फसलें लिहाज लिहाजी हुई, हरी भरी और एक रोग मुक्त फसलें कहीं ना कहीं वो थी। लेकिन अब हमारा किसान, कृषि वो क्षेत्र है, वहाँ अधिकारी से बात की, भैया हमारी फसल तिली की है, तिली की फसल में ये जो हमारा जो प्रक्रिया है उसे कैसे अच्छा बनाए, कैसे जो हमारा जो खरपतवार है वो हो गया है उसे नियंत्रित करना है, तो उनने दवा लिख दी और भैया ने आकर बढ़िया यहाँ पानी की टंकी में घोली और बस कंधे पर टांग के पूरे खेत में छिड़क। अब उससे हुआ क्या कि हमारे जो मित्र कीट थे बरसात की फसल की,
जी जी,
वो तो नष्ट हो गए। शत्रु कीट नष्ट हुए तो हुए, लेकिन मित्र कीट भी नकल हो खत्म हो गई उनकी। जब खत्म हो गई तो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन जो खेत में थे, जैसे केचुआ उत्पादन खेत में ही ऑटोमेटिकली होता था बरसात में, तो कहीं ना कहीं खेत को फायदा होता था, तो हमारे खेतों से खत्म है। और ऐसे ही हम अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि हर एक घर में गाय थी, जब गाय थी तो गाय का गोबर मूत्र हमारे जो खेतों तक पहुंचता था, जैव अमृत। अभी हमने एक प्रक्रिया की थी किसानों के साथ मिलकर लगभग 1 साल बराबर क्लाइमेट चेंज को लेकर कि किस प्रकार हम बदलाव ला सकें, तो इसमें एक थी जैविक खेती को लेकर कैसे सारे आयामों को हम जोड़ सकें, जैसे कृषि वानिकी, हमारे खेतों पर पेड़ लगाना, मेड़ों पर जैविक तरीके से खेती करना, घर में है तो घर में अगर छोटी सी जगह हो तो किचन गार्डन लगा सकते हैं हम, और एक अमृत मिट्टी, ये जो कहीं एक जैविक खाद है हमारी, जो एक अमृत मिट्टी जिसे हम लोगों ने नाम दिया था, वो एक कहीं ना कहीं रसायनों से कोसों कोस दूर थी और प्राकृतिक संसाधनों से हम लोगों ने उसे बनाया था, बनाकर किसानों के बीच में लाया और उसका उपयोग आज भी हो रहा है कई जगह। तो ये सारी चीजें अगर चलती रहती कंटिन्यू तो ये प्राकृतिक आपदाएं ना आती, यानी प्राकृतिक आपदाओं का आने का कारण भी यही है, हमने छेड़खानी की अपने पर्यावरण को, हमने उसको परेशान किया तो उसने हमें परेशान कर दिया।
तो हम ये जानना चाहेंगे अब किसान क्या करना चाहिए या बुंदेलखंड वासियों को क्या करना चाहिए, उस पर थोड़ा फोकस करें।
सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि हम प्राकृतिक संसाधनों की तरफ दौड़ें। अगर हम प्राकृतिक संसाधनों की तरफ जाएंगे, जैसे कि हमारी सरकार है जो शासन प्रशासन लगातार कह रही है कि जैविक खेती लिए बढ़ावा दीजिए, आप जैविक किसानों से कह रही है सरकार आप जैविक खेती करिए, हम आपकी खेती का उत्पादन उचित रेट पर उठाएंगे, आपके खेत से उत्पादन लेंगे, उसे मार्केट ले जाएंगे, अच्छा दाम दिलाएंगे, और प्राकृतिक संसाधनों को जुटाने के लिए सरकार सब्सिडी से लगाकर सारी तमाम प्रकार की सुविधाएं मुहैया करा रही है। अभी जैसे कि सरकार का मिशन चल रहा है कि जैविक किसानों को रजिस्ट्रेशन कर जो जैविक खेती की तरफ जाना चाहते हैं उन्हें सारे संसाधन प्रोवाइड करा रही है सरकार, ताकि हम इस चीजों से बच सकें, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनसे बच सके। तो सबसे बड़ा माध्यम है अगर हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ेंगे तो हमें जो हमारे जानवर हैं जैसे भैंस बकरी गाय ये पालन भी करेंगे, जब ये पालन हम करेंगे तो हमारा जो गौमूत्र है गाय भैंस बकरियों का वो उत्पादन होगा हमें तो होगा, तो उससे हमें जो है कहीं ना कहीं रसायनों की तरफ फिर नहीं भागना पड़ेगा।
हमारे श्रोताओं की तरफ से ये सवाल आ सकता है उनके मन में कि आप ये कह रहे हैं कि जैविक खेती की तरफ सरकार जोर दे रही है, तो ये बताइए कि रासायनिक खेती की तरफ किसने जोर दिया था?
रासायनिक खेती के लिए ये बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। जोर हम सभी किसानों ने ही प्रयास किए थे और कुछ पहले की जो शासन नीतियां कह लो या कुछ भी, कि देश में उतना अन्न उत्पादन नहीं था उस समय, तो सब लोग चिंतित थे कि भैया अन्न कहाँ से आएगा, इतनी जनसंख्याएं हैं, लोगों को खाने पीने की तमाम समस्याएं, तो हम कहीं उस लालच में डूब मरे। जब हम उस लालच में डूब मरे कि भैया ये डीएपी और यूरिया खाद डालने से जहाँ हमें 4 बोरा प्रति हेक्टेयर फसल होती थी, आज वो जाकर 8 बोरा प्रति हेक्टेयर हो रही है, तो भैया कहीं ना कहीं लाभ है, 2-4 बोरी खाद तो ही लग रहा है, जबकि हालांकि खाद सस्ता था। तो अब लोगों ने खाद यूज किया, उन्हें लालच मन में बढ़ गई, जब लालच बढ़ी तो हमारी जो धरती माँ है वो बंजर होती जा रही है, उसकी उत्पादन शक्ति घटती जा रही है, कहीं ना कहीं ये लालच हमें ले डूबा।
तो कुल मिलाकर के हमें फिर से प्राकृतिक खेती की तरफ जाना होगा, उसी को अपनाना होगा, यही एक माध्यम है जिससे जलवायु परिवर्तन पे हम थोड़ा काबू पा सकते हैं।
बिल्कुल, क्योंकि ऐसे आने वाले समय में इतना प्रयास किया जा रहा है, अगर किसानों का सहयोग रहा, जैविक खेती आज भी हालांकि बुंदेलखंड में हो रही है, हमने भी कई जगह जा जाकर देखा तो जैविक खेती किसान कर रहे हैं, जैसे किसी के पास 6 एकड़ जमीन है तो 2 एकड़ जमीन में किसान जैविक खेती कर रहा है, तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो एक एक्सप्लेन चाहता है कि जैविक खेती से हम 4 एकड़ में रासायनिक करते रहे और 2 में जैविक, ताकि आने वाले समय में इसको रासायनिक को धीरे धीरे खत्म किया जा सके।
जैविक खेती में होने वाले उपज की डिमांड भी ज्यादा है, जो सामान आप उपजाते हैं उसको बेहतर दाम मिल सकता है, मार्केट में उसकी डिमांड ज्यादा है, तो हम लोगों को चाहिए कि हम जैविक खेती की तरफ पलटे और अपने बातों को, अपने परंपरागत खेती को आगे बढ़ाते रहें। विकेश जी, झांसी मोबाइल वाणी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं दीजिए हमें
बहुत बहुत शुक्रिया
इजाजत। मेरा नाम है अनीस, मिलते हैं फिर किसी प्रोग्राम में। धन्यवाद।